कियाना ने अपनी सौतेली माँ हर्षाली के साथ मिलकर प्लान बनाया था। वो दीवा पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसकी कमजोरी पर वार करने का सोचा। ऐसे में उन्हें इनाया बिल्कुल परफेक्ट लगी, जिसके जरिए वो दीवा को ब्लैकमेल कर सकते थे। दोपहर के वक्त इनाया किसी काम के चलते रोड पर चल रही थी, उसी वक्त कुछ गुंडों ने उसका किडनैप कर लिया था। इनाया उस वक्त कॉल पर थी और उसकी फ्रेंड अमायरा ने सब कुछ सुन लिया था, और अब वो मदद के लिए दीवा के पास हॉस्पिटल में आई थी। इनाया के लिए वक्त का बीतता हर एक सेकंड जरूरी था, लेकिन अफसोस कोई उसकी बात सुन तक नहीं रहा था। पहले डॉक्टर माया ने उसे बुरी तरह इग्नोर दिया, तो फिर उसने सिस्टर नव्या को इनाया के किडनैप होने की बात बताई। नव्या ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और अपने मन में बोली, ये आजकल के बच्चे भी ना, सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ वीडियो शूट करना था तो इसे हॉस्पिटल ही मिला क्या? ऐसे दिन के उजाले में कोई किसी को क्यों किडनैप करके लेकर जाएगा? पहले भी हॉस्पिटल में इस तरह के सोशल एक्सपेरिमेंट को शूट करने के लिए कई इन्फ्लुएंसर आ चुके थे। उसका सामना इस तरह के लोगों से होता रहता था, तो नव्या ने उसे सीरियसली नहीं लिया। आजकल के बच्चों को इतनी कम उम्र में मोबाइल मिल जाता है, वेकेशन चल रहा है तो तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर डॉक्टर दीवा की बहन किडनैप भी हो गई है तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए बच्चे, ये हॉस्पिटल है, नव्या ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसके हाव भाव से साफ था कि उसने अमायरा की बात पर यकीन नहीं किया था। अमायरा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। वो एक पल रुकी और फिर खुद को सख्त करके बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं डॉक्टर दीवा गोयंका की कजिन सिस्टर इनाया गोयंका की क्लासमेट अमायरा वाजपेयी हूँ। वो मेरी दोस्त है, हम दोनों इम्पीरियल हाई स्कूल में पढ़ते हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मेरी बात झूठ निकले तो आप पुलिस को बुलाकर मुझे अरेस्ट करवा सकती हैं। अमायरा के चेहरे पर कॉन्फिडेंस और आंखों में आंसू देखकर नव्या का दिल पिघल गया था। नव्या ने जवाब में कहा, लेकिन सच में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर गोयंका इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है, हमें सर्जरी कंप्लीट होने का वेट करना होगा। तो हम क्या करें? अगर पुलिस को जल्दी नहीं बताया गया तो वो लोग इनाया को मार ना दे, मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है, अमायरा रोते हुए बोली। अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड को इस तरह मुसीबत में देखकर अमायरा के सब्र का बांध भी टूट गया था। ऊपर से वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा करो, तुम मेरे साथ बैठो, हम ऑपरेशन थिएटर के आगे चलते हैं, बस थोड़ी ही देर में सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी, नव्या ने उसे प्यार से समझाया। नव्या अमायरा को लेकर लिफ्ट के जरिए हॉस्पिटल के 10th फ्लोर पर पहुंची, जहां के ऑपरेशन थिएटर में दीवा सर्जरी कर रही थी। वहां जाकर अमायरा थोड़ा हैरान रह गई, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के आगे एक LED स्क्रीन लगी हुई थी, जिसके सामने खड़े होकर डीन और कुछ सीनियर डॉक्टर उस सर्जरी को देख रहे थे। वो एक बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी थी। हर कोई जानता था कि डॉक्टर दीवा गोयंका दुनिया के बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर क्रिस्टोफर एडम्स की स्टूडेंट रह चुकी थी। उसके काम करने के तरीके में उनकी छवि दिखाई देती थी। जिस तरह का माहौल था, उसे देखकर अमायरा समझ गई थी कि ऐसे में ना तो कोई और अंदर जा सकता था और ना ही दीवा बाहर आ सकती थी। उसने नमाखों से नव्या की तरफ देखकर पूछा, तो क्या हमें ही पुलिस को कॉल कर देना चाहिए? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर सच में इनाया किडनैप हुई है और हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो उसकी जान खतरे में आ सकती है, नव्या ने झट से कहा। वो बिना दीवा को कुछ बताए अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। तो फिर हम क्या करें? अमायरा ने घबरा कर पूछा। हमें उनका इंतजार करना ही होगा, उन्हें आने में कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे, और मुझे भी ऊपर अपने काम पर लौटना होगा। तुम यहाँ पर बैठकर डॉक्टर गोयंका के निकलने का इंतजार करो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम 24th फ्लोर पर आ जाना। किसी से भी कह देना कि मुझे सिस्टर नव्या से मिलना है, तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। नव्या ने उसे सब कुछ समझाया और फिर वहां से जाने लगी। वो भी अपना काम छोड़कर 1 घंटे खराब नहीं कर सकती थी। अमायरा वहां बैठ गई और इनाया की सलामती की प्रार्थना करने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई से दूर एक बंद फैक्ट्री के बाहर काफी सारी गाड़ियां खड़ी थीं। इनाया को वहां लाया गया। वो पूरे रास्ते बेहोश थी, जबकि हर्षाली और कियाना उनके आने का पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे। माँ, अब तक वो लोग आए क्यों नहीं है? मैं इस जगह पर और नहीं रह सकती, यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही है, कियाना ने मुंह बनाकर कहा। वो इस वक्त उस फैक्ट्री के अंदर थी। बस थोड़ी देर इंतजार करो, आ ही जाएंगी, हर्षाली ने जवाब दिया। अंदर ही अंदर उसका दल भी बहुत घबरा रहा था। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। हर्षाली जल्दी से दरवाजे के पास गई, अपने भाई के दोस्त को देखकर उसकी जान में जान आई। अच्छा हुआ रणवीर तुम आ गए, बहुत टाइम लगा दिया, हर्षाली ने उसे देखकर कहा। हाँ, ऐसे कामों में थोड़ा टाइम लग जाता है, रणवीर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। उसने इनाया को अपनी गोद में उठा रखा था। तो तुमने मेरा काम कर दिया, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते कि तुमने ये काम करके मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है, हर्षाली ने जवाब दिया। उसने अपने पर्स में से नोटों की गड्डी निकालकर रणवीर को देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया था। अरे नहीं दीदी, इसकी क्या जरूरत है, घर का ही मामला है, रणवीर बोला। फिर भी अपनी बड़ी बहन की तरफ से रख लो, हर्षाली ने जबरदस्ती उसे पैसे थमा दिए थे। इनाया को वहां एक कुर्सी पर बैठाने के बाद रणवीर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और फिर हर्षाली की तरफ देखकर कहा, इसे इंजेक्शन लगाने के 30-40 मिनट बाद इसे होश आ जाएगा। आपके पास इतना ही टाइम है, आप इसके साथ जो करना चाहें वो कर सकती हैं, हम बस बाहर ही हैं। इतना कहकर रणवीर बाहर आ गया था। उसके दो गुंडे अभी भी बाहर खड़े अंदर की तरफ झांक रहे थे। उन्हें देखकर रणवीर ने सिर हिलाया। उनमें से एक गुंडा उसके पास आकर बोला, भाई लड़की तो बहुत अच्छी है, ऊपर से उम्र में भी काफी कम लग रही है, स्कूल स्टूडेंट लग रही है, क्या कहते हैं कुछ नया ट्राई करें? पागल तो नहीं हो गए हो? हमें बस उसे किडनैप करने और उस पर नजर रखने के लिए कहा गया है, कुछ भी किया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। रणवीर ने गुस्से में उन्हें डांटकर शांत कर दिया था और दूर भेज दिया ताकि गलती से भी वो इनाया को नुकसान न पहुंचा सके। वहीं अंदर कियाना और हर्षाली अकेली थीं। फैक्ट्री का दरवाजा रणवीर ने बंद कर दिया था। कियाना जल्दी जल्दी इनाया के सारे कपड़े निकाल रही थी। माँ जल्दी से इसकी फोटोग्राफ्स क्लिक कीजिए, कियाना बोली, और उसके कहते ही हर्षाली ने इनाया की फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर दिया था। उसने इनाया के बिना कपड़ों में लगभग 50 से भी ज्यादा फोटोग्राफ्स ले ली थी। तस्वीर लेने के बाद कियाना ने जल्दी से उसे वापस कपड़े पहना दिए थे। हालांकि ये सब करते हुए कियाना का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने हर्षाली की तरफ देखकर पूछा, माँ अब आगे क्या करना है? अब चलो यहाँ से, उसके बाद इन तस्वीरों के साथ उस डॉक्टर को कॉल करना है, हर्षाली ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन माँ हम इसे इस तरह से अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? बाहर वो लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, कहीं उन्होंने इसके साथ कुछ कर दिया तो? कियाना ने थोड़ा घबरा कर पूछा। उसका मकसद दीवा को ब्लैकमेल करके आर्यांश को दूर करना था, न कि इनाया को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना। वो कुछ नहीं करेंगे, तभी मैंने उन्हें पैसे दिए हैं। इसे यहाँ लेने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा, खुद इसकी बहन आएगी, तो मेरे साथ चलो, हर्षाली ने उसे समझाया और फिर कियाना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगी।
वहीं दूसरी तरफ लगभग एक घंटे के अंदर दीवा का ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी डीन और बाकी डॉक्टर उससे इस ऑपरेशन के बारे में पूछ रहे थे। डीन तो यही चाहते थे कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल में चर्चा की जाए। उनसे बात करते हुए दीवा की नज़र अमायरा की तरफ गई। उसे वहां देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी और उन्हें वहीं पर छोड़कर सीधा अमायरा की तरफ पढ़ी। दीवा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? डॉक्टर गोइंगा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अमायरा ने घबराती आवाज़ में कहा। वो इतने लोगों के सामने इनाया की किडनैपिंग के बारे में नहीं बता सकती थी। दीवा ने अभी चेंज भी नहीं किया था, ऊपर से सब उससे बात करना चाहते थे। उसने हिचकिचाकर पूछा, लेकिन अभी मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी होगी, क्या तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकती हो? एक मिनट का भी इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, ये बात इनाया से जुड़ी हुई है, अमायरा बोली। उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे वो अभी फूट फूट कर रोने लगेगी। इनाया का जिक्र होते ही दीवा भी थोड़ा घबरा गई थी। उसने डीन की तरफ देखा तो डीन भी इशारे को समझते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुम टाइम ले सकती हो, मीटिंग हम कल रख लेंगे, वैसे भी सर्जरी लंबी थी और तुम थक गई होगी। दीवा ने उन्हें थैंक्स कहा और फिर अमायरा को लेकर जल्दी से अपने केबिन में आई। वहां पर कोई नहीं था। केबिन के अंदर आते ही दीवा ने तुरंत पूछा, जल्दी बताओ क्या हुआ है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है इनाया का किडनैप हो गया है दीदी, दरअसल हम दोनों फ़ोन पर बात कर रहे थी और वो कुछ लाने के लिए सुपरमार्केट जा रही थी। मैंने कुछ अजीब आवाज़ सुनी, फिर अचानक से कॉल कट हो गया। मेरा यकीन कीजिए, सच में उसका किडनैप हो गया है, अमायरा ने दीवा को सब कुछ बता दिया और फिर रोने लगी थी। उसे यही डर लग रहा था कि कहीं बाकी लोगों की तरह दीवा भी उसकी बात पर यकीन करने से मना ना कर दे। पूरी बात सुनते ही दीवा का सिर घूम गया था। आखिर कौन हो सकता था जिसने इनाया का किडनैप कर लिया होगा? सर्जरी के दौरान उसका फ़ोन यहीं ऑफिस में पड़ा हुआ था। पुलिस को और आर्यांश को इस बारे में बताने के लिए दीवा ने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया, उसके नंबर पर एक अनजान कॉल आया। कैसी हो मिस दीवा गोइंगा? सामने से कियाना की कॉन्फिडेंस भरी आवाज़ आई। दीवा उसकी आवाज़ पहचान गई थी। अचानक कियाना का कॉल देखकर पहले तो वो हैरान रह गई, लेकिन फिर दीवा को समझते देर नहीं लगी कि ये उसी की हरकत है। दीवा की आंखें गुस्से से भर उठी थी। मुझे तुमसे इसी तरह की घटिया हरकत की उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम एक बच्चे को टारगेट करोगी। अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो, मेरी बहन को क्यों किडनैप किया है तुमने? दीवा गुस्से में बिफरते हुए बोली। मैंने तो कल तुम्हें चांस दिया था, लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा घमंड आ गया था, अब भुगतो, कियाना मुस्कुराते हुए बोली। दीवा को इतना गुस्से में देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था। कियाना को इस बात का भी यकीन हो गया था कि उसका ये प्लान ज़रूर काम करेगा। अभी तो उसने दीवा को फ़ोटोज़ भी नहीं भेजी थी और वो इतना भड़क गई थी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि अगर आर्यांश को इस बारे में पता चला तो क्या होगा? दीवा बोली। जाओ जाकर बता दो, कियाना ने जवाब दिया। उसका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि कियाना की प्लानिंग छोटी नहीं थी। सीधे सीधे बताओ क्या चाहती हो? दीवा ने सख्त आवाज़ में पूछा। आर्यांश को छोड़ दो, कियाना ने सीधे सीधे कहा। दीवा को धमकियों से सख्त चिढ़ थी। वो कियाना को अच्छा खासा सबक सिखा सकती थी, लेकिन फिलहाल उसका दिल इनाया के लिए डर रहा था। ठीक है,
मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो, दीवा ने कांपती आवाज में कहा। दीवा इतनी आसानी से कियाना की बात मान जाएगी ये उसने नहीं सोचा था। कियाना ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। अगर इन 2 दिनों में तुमने आलियांश को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बहन को इस दुनिया से गायब कर दूंगी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, पहले मुझे इनाया की आवाज़ सुनाओ, वो ठीक है ना, मुझे बताओ, दीवा ने आगे कहा। कियाना जैसे लोग किसी के इमोशंस के साथ भी खेल सकते थे, इसलिए दीवा ने फिलहाल समझदारी से शांत लहजे में काम लेने का सोचा। उसका इतना शांत रहना कियाना के लिए अच्छा नहीं था। कियाना के दिल में यही ख्याल आया कि दीवा इस मामले में जरूर आर्यांश की मदद लेगी। कियाना ने गहरी सांस ली और सर्द आवाज में कहा, अगर तुम ये सोच रही हो कि आर्यांश की मदद लेकर इस मामले को निपटा सकती हो तो इस गलतफहमी में मत रहना। अगर तुमने किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन की न्यूड पिक्चर्स सब जगह वायरल कर दूंगी। जानती हो ना इंटरनेट कितनी खतरनाक जगह है। कियाना ने अपना आखिरी दाव भी चल दिया था, जिसके आगे दीवा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कॉल के दौरान ही कियाना ने दीवा को इनाया की काफी सारी पिक्चर्स भेज दी, जिन्हें देखकर दीवा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। दीवा को आर्यांश से दूर करने के लिए सच में कियाना ने बहुत ही घटिया चाल चली थी। क्या होगा दीवा का फैसला? क्या वो आर्यांश को छोड़ देगी या उसे इस बारे में बताएगी? ये तो आगे पता चलेगा। चलिए आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। आज का पाठ भी काफी बड़ा हो गया था।